हरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयिर्याण नमो वज्जायाण नमो लोये सवसाहूण एषो पञ्च नमो यारो सौव पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येषीं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज की, समस्त धर्मों का मूल सम्यक दर्शन, उसके होने पर, उसके रहने पर अन्य धर्म जैसे कि दया धर्म, करुणा धर्म, चारित्र धर्म, अहिंसा धर्म, उत्तम क्षमा आदि दश धर्म इत्यादि, ये सारे के सारे सम्यत्व के साथ ही धर्मत्व को प्राप्त होते हैं। सम्यक दर्शन के बिना उत्तम क्षमा को प्राप्त कोई भी नहीं कर सकता, मार्दव धर्म नहीं आ सकता। मिथ्यात्व के काल में जीव क्षमा करता हुआ दिखाई देता है, नम्रता भी दिखाई देती है, मंद कषाई भी दिखाई देता है, निर्लोभी भी दिखाई देता है, दयावान भी दिखाई देता है, दानशूर भी दिखाई देता है। सारी बाहरी जो धार्मिक अनुष्ठान की शारीरिक प्रवृत्तियां हैं, सामान्यतः पहले गुणस्थान वर्ती में भी दिखाई दे सकती हैं, किंतु ये प्रवृत्तियां धर्म की कोटि में नहीं आती तब तक जब तक कि सम्यक दर्शन उसके साथ प्राप्त हुआ न हो। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान का आत्मकल्याण का मार्ग एकदम निर्दोष मार्ग है, कहीं भी जरा भी उन्होंने छूट नहीं दिया। अब पालन करने वाले जीवों को ये जरूर हो सकता है कि ये तो कहीं भी छूट नहीं देते, जरा भी, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हाँ? बहुत ही कठिन है, बहुत ही वो है, ये है। ये विचार उस जीव को आते हैं जिसको अपना मोह छोड़ना, अपना प्रमाद छोड़ना, आत्मकल्याण के प्रति समर्पित होना, अपने सुख को ही अपना, अपने अंदर है उसी को पाना, ये जिसका लक्ष्य नहीं है उसके लिए सरल काम भी कठिन है। कितना भी सरल बना करके दे दो वो कठिन ही लगेगा, कठिन ही लगता है। हाँ, क्योंकि उसके प्रति हम समर्पित नहीं हैं। आस्था मजबूत नहीं है, दृढ़ नहीं है, उसके प्रति रुचि नहीं है, लगाव नहीं है, तो सरल विषय भी कठिन लगेगा, ऐसा होता है। और जिस विषय से हम जुड़ जाते हैं वो कठिन भी हो तो उसको पीछे पड़ जाते हैं तो वो सरल लगने लगता है। विद्यार्थी को पढ़ना ही पड़ता है, 365 दिन खाली बैठ करके निकालेगा कठिन 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 कह करके, जबरदस्ती से उसको पढ़ना पड़ता है कि नहीं, ना चाहते हुए भी 4 बजे उठना पड़ता है, 3 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि कल परीक्षा है, कैसे पास होंगे, ये चिंतित रहता है। वो चिंता के कारण से वो जिस जो कठिन हो उसके पीछे भी पड़ जाता है। उस चिंता ही नहीं लगती। पढ़ाई की चिंता होने से प्रयत्न करेगा, पढ़ाई की चिंता न हो तो प्रयत्न क्यों करेगा, फिर वो फेल हो जाता है। फेल होने के डर से ही चिंता होती है कि फेल न हो जाऊं। ये होता है। जिनेन्द्र भगवान क्या करेंगे, उन्होंने कठिन नहीं बनाए रखा, उन्होंने जो वस्तु स्वरूप जैसा आत्म कल्याण के लिए आपका हो सकता है वैसा निर्दोष कहा है, उसमें कहीं छूट देते तो नहीं, मोक्ष ही नहीं होता। सब कुछ करके भी यहीं बैठे रहते, फिर आप ये कहोगे हमको मोक्ष फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, तो तुम्हारी छूट की इच्छा थी, छूट दे दिया इसलिए मोक्ष नहीं जा रहे। छूट नहीं चलता। हाँ, झूठ आता, छूट ही झूठ है, बिल्कुल ठीक है, वो छूट ही झूठ है। वस्तु स्वरूप में कभी भी कमी की इच्छा, छूट की इच्छा नहीं करना चाहिए। जैसा है वैसा ही रहने दो, मुझे जितना होगा उतना मैं करता जाऊंगा, पूर्ण करने की श्रद्धा रखूंगा और जब तक नहीं होता प्रैक्टिस करूंगा। विद्यार्थी को टेक्स्ट बुक कठिन है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि उनके वास्ते कुछ छूट दिया जाए, ऐसा नहीं चलता। टेक्स्ट बुक्स में जो है उसका अध्ययन करना ही पड़ेगा और वैसा ही लिखना पड़ेगा, तो ही पास नहीं तो ना पास। हाँ, पढ़ना चाहिए। मोक्ष मार्ग ऐसा ही है, आप चाहे करो चाहे ना करो, जब भी करोगे ऐसा ही करना पड़ेगा और यही करना पड़ेगा, नहीं तो कोई दूसरा तो मार्ग है ही नहीं। सब पगडंडियां दूसरी तरफ गई हैं, जाना नहीं जाना आपके ऊपर है। बहुत सारी पगडंडियां, 363 मत हैं दुनिया में, वो सब छूट वाले तो है, चलना हो तो चलो, उससे भी मोक्ष मिलता है कि देख लो। छूट से मोक्ष मिलता नहीं है, और इसीलिए जिनेन्द्र भगवान ने कहा 7 तत्वों के प्रति आस्था के बाद ही सम्यक दर्शन होता है, और 7 तत्वों में से अंतिम तत्व है मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व, इस मोक्ष तत्व के प्रति आप यदि समर्पित हैं तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अपने आप संशोधन करोगे, ढूंढोगे, अध्ययन करोगे, आचरण करोगे, सब कुछ करने करना ही पड़ेगा, करने के लिए मन आपका कहेगा ही कि करो, फिर मोक्ष ही चाहिए तो वो करो, उसके लिए क्या क्या चाहिए पड़ता सब जुटा लो, जहां जाना पड़ता वहां जाओ। आत्मा बोलने लगती है, कहने लगती है, और जैसा आत्मा कहते हैं वैसा ही हम चलने लगते हैं। जैसे होते हैं हमारे विचार वैसा ही होता है आचार, और जैसा होता है आचार वैसा उस आचरण का मिलता है फल, और वह फल ही मोक्ष है। मोक्ष के प्रति विचार है क्या नहीं, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। है तो फिर सात तत्व हैं, उनकी श्रद्धा करो, समर्पित हो जाओ, और उसमें क्या छोड़ना, क्या लेना, क्या नहीं लेना, सात तत्वों में जो जो कहा है, जो जो कहा है उसका अध्ययन करो। अध्ययन करने के बाद जो छोड़ना है छोड़ो, तुम्हारी शक्ति के अनुसार छोड़ो। एकदम से तो ये तो नहीं कह रहे हैं कि सब छोड़ बैठो, जैन धर्म ऐसा नहीं है। सत्यतस त्याग सत्यतस तप ये भी कह रहा है, तो कठिनाई कहाँ आ रही है आपको? आप स्वयं अपने तरफ से शक्ति के अनुसार कर रहे हैं तो छूट तो ले ही रहे हैं, है? छूट लेके कर रहे हैं ना, इतनी ही शक्ति है और आगे की शक्ति नहीं है। तो जिसका शक्ति नहीं है वो आप नहीं कर सकते हैं, तो वो तो बच ही रहा है, वो साधना तो बची रही है, शेष रह रही है। परंतु ऐसा नहीं कि आपकी शक्ति के अनुसार अभी जितना आप कर रहे हैं उसी से मोक्ष की सिद्धि हो जाए, ये नहीं। वो तो पूरी शक्ति लगानी पड़ती है, उसके ऊपर श्रद्धा करो, और उससे पहले जितना होता है उतना करो, ये कहलाता है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करते करते एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते जो नहीं हो सकता था वो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तो कम से कम हो ही जाएगा। वो हो जाएगा तो फिर मोक्ष मिलने वाला ही है। पहली कक्षा के विद्यार्थी को अभी जो पहली कक्षा में अटेंड कर रहा है उनके लिए एमए कक्षा की पुस्तक को दिखा दिया, देखो पढ़ाई तो ऐसी है, इतने पन्ने होते हैं, इतने अक्षर होते हैं, इतना सब्जेक्ट होता है, इतने गणित होते हैं, घबरा जाएगा, मुझे पढ़ना ही नहीं, स्कूल जाना ही नहीं। तो पहली कक्षा के विद्यार्थी घबराता है, इसलिए तो पहली कक्षा के बुक्स को अलग से बना दिया। तुमको एमए कक्षा के बुक को पास करना है, इसलिए पहली कक्षा अ आ ऐसा लिखना, ये लिखना भी आ जाए, ओ लिखना आ गया ना, पहली कक्षा पास। अब इसी को पकड़ बैठोगे एमए में कि मुझे तो लिखने के लिए आता है, मुझे मास्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, टीचर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, क्योंकि अ आ आता है मुझे। नहीं, वो आ तो पहली कक्षा का विषय है, उसको पास करके आए हैं, करते 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 टेंथ एलेवंथ एंड लास्ट में हो जाकर के भगवंत बनने के लिए तो जा रहे हो। टप्पे टप्पे जा रहे हैं, ऐसा अनुव्रत जो है, अनुव्रत से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष मार्ग की ओर टप्पे टप्पे बढ़ना हो रहा है अभी। अनुव्रत के पश्चात महाव्रत भी है, अनुव्रत से मोक्ष होता तो फिर महाव्रतों की जरूरत क्या थी? तो अनुव्रत का विधान शक्ति के अनुसार करो इसलिए कहा, और अनुव्रत में भी फिर दो, पाक्षिक श्रावक नैष्ठिक श्रावक। नैष्ठिक जरा कठिन है, पाक्षिक जरा सरल है। अब पाक्षिक में भी दो, एक नियम पूर्वक एक विदाउट नियम, कितना सरल है। सरलता की प्रथम कदम जहां है उस पर तो हम कदम रखे, नहीं तो ये सोचे कि जैन धर्म बहुत ही कठिन है, जैन धर्म बहुत ही कठिन है, क्या मुनियों की चारित्र को देखना और घबरा करके कुछ भी नहीं करना, ये बुद्धिमानी है क्या? जैन धर्म कठिन है, जैन धर्म कठिन है। अरे जैन धर्म तो त्रिरंज गति में रहने वाले त्रिरंजों को भी है, वो जो कर सकते हैं उनके लिए भी है। वो नैष्टिक श्रावक की श्रेणी तक आ सकते हैं। देखो आप में ये योग्यता है कि नैष्टिक के बाद महाव्रत की श्रेणी मुनि पद तक जा सकते हैं। जिसको श्रावक धर्म कहा है वो त्रिरंजों का भी धर्म है। वो पाक्षिक सम्यक दृष्टि बन सकता है, पाक्षिक श्रावक के आचरण पर कदम रख सकता है और नैष्टिक श्रावक के उसमें आचरण में भी वो आरूढ़ हो सकता है। दो प्रतिमा का पालन कर सकता है त्रिरंज, और ऐसे कई त्रिरंजों का उदाहरण प्रतिमान शास्त्रों में वर्णन में आता है कि इसने 12 अनुव्रतों का पालन करके दया का पालन करके शाकाहारी रहकर और पानी को जहां से चट्टानों से गिरता है प्रासुक बन जाता है उसी को पीकर, नहीं तो नहीं पिया, झरने का ही पानी पिया क्योंकि वहां प्रासुक मिलता है, ऊपर से गिरा हुआ पानी चोट से प्रासुक बन जाता है, वो गिर गिर करके चोट लगती है प्रासुक बनता है, उसी को पीने का संकल्प लेता है वो। दूसरी जगह से रुका हुआ पानी जिसमें 48 मिनट के भीतर जीव उत्पत्ति होती है ये कहते हैं ना, उसको नहीं पिएंगे हम, ऐसा संकल्प लेता है। और त्रिरंज गति में ये संकल्प बहुत कठिन है, प्यास लगी तो कोई ला करके देने वाला नहीं, खुद को ही जाना पड़ेगा और वहां पर शेर बैठा हो तो उससे भी बचना पड़ेगा। जब नहीं है धीरे से सावधानी से जाकर के पी करके प्यास बुझा के, हिरण क्या करेगा, मान लो हिरण ने नैष्टिक व्रत धारण किया शेर से डरेगा, अब शेर वहीं पर झरने के पास ही बैठा है तो उस दिन पानी नहीं पी पाएगा। वो अपने प्राणों की भी रक्षा करना है और व्रतों का पालन भी करना है। अब वो आस्था तो हो चुकी है व्रतों की, उस आस्था को साकार कर लेता है, वो कठिनाई से गुजरता है। मनुष्य को छान कर पानी पीना कोई कठिन बात नहीं, ला करके पीना कोई कठिन बात नहीं, मनुष्य के लिए व्रतों का पालन इतना सरल है इससे 100 गुने कठिन त्रिरंज गति में है। इतनी कठिनाई से गुजर करके भी वो नैष्टिक श्रावक बनता है, तो आप देखिए त्रिरंज गति में श्रावक धर्म आसानी से निभा रहा है। वो दो प्रतिमा इतनी कठिनाई में, पशु पर्याय में भी, पशु पर्याय में भी ये काम करता है वो। तो फिर मनुष्य को देखो, मनुष्य का असली धर्म अनुव्रत नहीं, ये तो त्रिरंज का है। अनुव्रत है ही नहीं, आप जो अनुव्रति बन रहे हैं नहीं बनना चाहिए, आपके लिए तो वास्तव में महाव्रत ही है, परंतु वो भी नहीं हो रहा है जिसको, इसलिए अनुव्रत है ये। उसमें भी छूट चाहिए और उसमें भी घबराहट है, छूट में भी फिर घबराहट, कभी दोष लग जाए तो क्या करूं, इससे घबरा करके लिए बिना वंचित हो रहा है। क्यों नहीं चल रहा, विचार करो, चिंतन करो, जीव कटपट जाते हैं मशीन में तो जो भी हम काम करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, उसमें क्या साध रहे हैं, हिंसा को त्यागना और अहिंसा को बढ़ाना, यही कार्य प्रत्येक समय में है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म यानी अहिंसा, उसको हम प्रत्येक समय साधते जा रहे हैं, प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, उसमें बढ़ रहे हैं। चाहे जल का कहो, चाहे वनस्पति का कहो, चाहे पृथ्वी का कहो, चाहे चलने का कहो, चाहे देखने का कहो, सब में हिंसा होती है ना। वो कहे क्यों नहीं चलता, ये क्यों नहीं चलता, इसमें सब हिंसा हिंसा का अहिंसा की ही चर्चा है, हिंसा हिंसा का ही बात है, एक ही बात की चर्चा सब जगह है। वस्तु की चर्चा नहीं, वस्तु में हिंसा, वस्तु के उपयोग से हिंसा कितनी अहिंसा कितनी, यही चर्चा सब जगह है। कोई वस्तुओं की मर्यादा कर रहा है, मैं इतना ही वस्त्र पहनूंगा, इसमें कौन सी दृष्टि है, हिंसा की। तो ज्यादा परिग्रह हिंसा है, कम रहोगे तो कम हिंसा कम होगी, उतने प्रमाण में आप अहिंसक कहलाओगे। कुछ भी करते हैं तो उसमें हिंसा हिंसा ही सवाल है। अहिंसा धर्म है, उसको साधना है, और हिंसा को त्यागते हुए जाना है। तो मैं ये बता रहा था कि त्रिरंच गति में जो धर्म है वो अनुरत रूप है, उससे ज्यादा कुछ नहीं वहां। लेकिन मनुष्य गति में मनुष्य को जो व्रत है वह महाव्रत ही है, मनुष्य को मैं कह रहा हूं। अब स्त्री को बोलो अनुव्रत ही है, तो इनको रखा जा सकता है त्रिरंचों के बराबर है, मतलब बराबर मतलब त्रिरंच नहीं कह रहे हैं, मैं समझ त्रिरंच तो महान है। त्रिरंच आप जैसे आप आरिका व्रत में जो साधना कर सकते हैं वो त्रिरंच नहीं कर सकेगा। आपकी भी दो प्रतिमा है और त्रिरंच की भी दो प्रतिमा है, लेकिन त्रिरंच से ज्यादा विशुद्ध पालन मनुष्य पर्याय में आप लोगों को है, त्रिरंच नहीं कर सकता इतना, क्योंकि पराधीन है वो, पराधीन पर्याय, उसके हाथ पांव तो है ही नहीं, आपके हाथ पांव हैं, आप छान के पी सकते हैं। त्रिरंच किसे छानेगा, बर्तन कहां से लाएगा, छन्ना कहां से लाएगा, वस्त्र कहां से लाएगा, तो उसकी जगह वह करता है, आपकी जगह आप करते हैं। तो आप तो छान के पी रहे हैं और बिना छाने वो प्रासुक पी रहा है, वो उसको ढूंढेगा जहां पर चट्टान से गिर रहा है और प्रासुक कम से कम पानी प्रासुक है, यहाँ सूर्य किरणों से तपा हुआ है, उस पानी को पिएगा, उसमें जीव नहीं है। इस तरह से अहिंसा का पालन, अहिंसा के सिद्धांत के प्रति इतना समर्पण उसका जगता है, उस रूप में वह पालन करता है। और आप नहीं चट्टान से गिरे हुए पानी को लाएंगे, लेकिन उसमें त्रस जीवों का कलेवर रहता है, वो भी मरे हुए हो सकते हैं, उन कलेवरों को हम पानी छानेंगे, होते कि नहीं त्रस जीव, मरे हुए रहेंगे, शव रहेंगे उनके, उनको छानेंगे, क्योंकि हम शाकाहारी हैं मांसाहारी नहीं, वो छान करके उन जीवों को शवों को निकाल लेगा। गिरने के बाद त्रस भी मरते हैं और स्थावर भी मरते हैं, प्रासुक होता है पानी, पर आपको छान करके पीने का नियम बनाया, त्रिरंच को छानने का कोई नियम नहीं, जैसा जिस स्थिति में है वैसा पी लो, तो मांसाहार से नहीं बच पा रहा है, पर जीव हिंसा से तो बचने लगा। उसमें जिसमें जीव है ही नहीं उस पानी को पीना, जीवों का कलेवर है मरे हुए जीवों का, उसको नहीं बचा पाएगा वो त्रिरंच। देखो धर्म कहां कहां पर किसको कितना कितना है ये समझ में आता है। और मुनि महाराज को कहा तुमको छानना भी नहीं, कपड़ा भी नहीं रखना, बर्तन भी नहीं रखना, आपको अनुव्रत पालन करना चाहते हैं, आप परिग्रही हैं तो आपको तो सब रखना पड़ेगा, मुनि बनने के बाद सब छूटेगा, पर आपको तो वस्त्र भी रखना पड़ेगा छानने के लिए, बर्तन भी रखना पड़ेगा, छान के पीना पड़ेगा। और आप जो पीते हैं उसको ही मुनि को देना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा काम और दे दिया आपको। खुद छान के पियो और छने हुए जल को ही महाराज को देना, क्योंकि वो महाव्रती हैं, छानना भी उनका काम नहीं है। छना हुआ मिलता है, मिलेगा, क्योंकि मनुष्य विवेकी है, श्रावक विवेकी है, खुद का भी व्रत पालन करेगा, अहिंसा व्रत छानेगा, सब कुछ करेगा, खुद का भी पालन करेगा और उस निर्दोष जल को त्यागी को भी देगा। ये जिम्मेदारी श्रावक की है। कैसी जिम्मेदारी? खुद को अनुवृत्ति बन करके रहना और महावृतियों को हमारा जो शुद्ध आहार है उसी को देना, अशुद्ध नहीं देना। ये अब विचार करो, जैन धर्म की साधना क्या है? थोड़ा सा और बढ़ करके विचार करोगे तो पता चलता है, अनुवृत्तियों के बिना, अनुवृत्त का आचरण के बिना महावृत्ति भी रह नहीं सकते महावृत्ति बनकर। अगर आपने अनुवृत्त पालन करना छोड़ दिया तो महावृत्ति को आहार क्या कराओगे, कौन सा आहार कराओगे? है कि नहीं? एक के ऊपर एक डिपेंड है। मुनि के महाव्रत श्रावक पर डिपेंड है। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि आहार लेने पर ही मोक्ष होता है, महाव्रत धारण कर मोक्ष करने पर मोक्ष होता है। महाव्रत धारण कर लिया, आहार नहीं लिया, मोक्ष चले गए, ऐसा क्या नहीं होता? आहार लिए बिना क्या मोक्ष गए है क्या? नहीं। कोई भरत चक्रवर्ती ने आहार कहाँ लिया? बोलो, मुनि बनने के बाद भरत चक्रवर्ती ने आहार कहाँ लिया? एक भी आहार नहीं हुआ। पहले सामायिक नहीं केवल ज्ञान हो गया था, अब भरत चक्रवर्ती श्रावक पर कहाँ डिपेंड है? महाव्रती डिपेंड होता है ऐसा एकांत नहीं, पर जिनको केवल ज्ञान नहीं हो पाया उनका सवाल है, उनको तो आहार लेना ही पड़ेगा। केवल ज्ञान होने के पश्चात भूख प्यास नहीं होती, आहार की जरूरत ही नहीं रहती, पर केवल ज्ञान होने से पहले पहले आहार आवश्यक है। इसलिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है भी और नहीं भी, दोनों है, अनेकांत है। अनेकांत है इसमें, अनेकांत है। तो अनुव्रत और महाव्रत, देखो अनुव्रति सहायक होता है किस महाराज के लिए? जो महाराज दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए उस महाराज के लिए सहायक होता है, और यह उसका कर्तव्य है। दान धर्म उसका कर्तव्य माना गया। श्रावक के षट कर्म में कर्तव्य है वो। दान कौन देता है? जिसके पास परिग्रह है। त्याग कौन करता है? जिसके पास परिग्रह है। त्याग और दान में बहुत फर्क है, जरा इसको समझ लेना। त्याग अलग बात है, दान अलग। दान त्याग के कोटि में नहीं आता। दान सो त्याग नहीं, वस्तु जरूर छूटता है, वस्तु आप में, आपके यहाँ से दूसरे के उपकार के लिए जरूर जाता है, परंतु उसको त्याग नहीं कहते। दान के भाव से दान देते हैं, त्याग के भाव से त्याग करते हैं, तो त्याग करने वाला वापस लेता नहीं या कुछ रखता नहीं, इसको कहते हैं त्याग। हाँ, त्याग त्याग आजीवन पर्यंत करता है। देखो, जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता है कोई भी करना हो, हालांकि ऐसा भी करता है त्याग का अभ्यास करने के लिए थोड़े थोड़े दिन तक त्यागता है, ये भी बात है, परंतु त्याग जो असली त्याग होता है, जीवन पर्यंत त्याग करना ही असली त्याग है। और वह जब तक नहीं होता तब तक थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाना, ये त्याग का अभ्यास है। त्याग अलग वस्तु है, दान अलग वस्तु है। दान क्या है? दान दूसरे के उपकार के लिए जो है उसमें से कुछ देना, देने को दान कहते हैं, छोड़ने को त्याग कहते हैं। छोड़ने के बाद उसको ग्रहण नहीं करना, इसको कहते हैं त्याग। तो फर्क है क्या? नहीं, त्याग और दान में बहुत फर्क है। कुछ लोग कहते हैं दान में त्याग आ जाता है, नहीं, दान में त्याग नहीं आता। त्याग करने वाला किसी को दे के नहीं जाता, वो तो छोड़ के जाता है, दे के नहीं जाता। देने वाला दाता, दानी कहलाता है, दान कहलाता है। फिर वो जैसे कोई चक्रवर्ती है, वैराग्य हो गया, अब उन्होंने दान दे के गए वो या त्याग करके गए? महाव्रत धारण कर लिया, चक्रवर्ती मुनि बन गए, दान दे के चले गए क्या त्याग करके चले गए? त्याग करके चले गए। क्या सबको बुलाया, मैं दीक्षा ले रहा हूँ दान में ले लो, दीक्षा ले रहा हूँ दान में ले लो, सब खत्म कर दिया दान दे करके, फिर बाद में त्याग ले लिया, मुनि बन गए? ऐसा है नहीं। दान देते हुए नहीं बैठे। ये वस्तु संसार बंध के लिए कारण है, इसमें रहना, इसमें अपना जीवन व्यतीत करना पाप को ही बंद करना है। वस्तु मात्र आत्मा के लिए हानिकारक है, तो इसको क्या करना? अनावश्यक है, बस अनावश्यक हो गया। अनावश्यक है तो निकलो, फिर अनावश्यक है तो कुछ भी मत ले लो इसमें से, अपनी आत्म साधना कर लो। आत्मा की साधना एक ही आवश्यक, बस आत्म साधना के लिए निकल गए, छोड़ दिया इन्होंने इसको, दिया नहीं किसी को, छोड़ दिया। अब जो पुत्र हैं वो हैं, उनके लिए बुला करके तुम इसको संभालो ये कह करके जरूर जाते हैं, पर वो दान है क्या? पुत्र को दान नहीं दिया जाता, दान सत्पात्रों को दिया जाता है। पुत्र के लिए परिग्रह सौंपा, ये दान नहीं कहलाता। परिग्रह सौंप दिया, मेरे पीछे मेरे लिए अनावश्यक है, तो ये इस परिग्रह से दान धर्म करते रहे, इसके जिम्मेदारी से इसको मैं छोड़ देता हूं, छोड़ देता है। छोड़ना त्याग कहलाता है और देना दान कहलाता है। अब ये जिसको सौंप दिया है वो दान भी देगा, नंतर त्याग भी करेगा। दान थोड़ा 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 दिया जाता है, जो है उसमें से थोड़ा दिया जाता है। त्याग सब कुछ अनावश्यक समझा जाता है, उससे निर्मोही हुआ जाता है। वस्तु मात्र से निर्मोही होना त्याग है, और वस्तु से निर्मोही तो नहीं है, लेकिन दूसरे का उपकार के भाव आ गए तो उस वस्तु का सदुपयोग करता है, भोग करके नहीं। वस्तु का भोग पाप बंध का कारण, वस्तु का दान पुण्य बंध का कारण। देखो कैसा है, उसी वस्तु को दूसरे के लिए दे रहे हैं तो पुण्य बंध रहा है, उस वस्तु को अपन स्वयं भोग रहे हैं तो पाप लग रहा है। इतना धन है उसका भोक्ता हम ही बनते हैं तो पाप लगेगा, परंतु सत्पात्रों में दे देते हैं पुण्य लगता। क्योंकि हम भोगेंगे तो मोह बुद्धि पूर्वक भोगेंगे, तो इसमें मोह के कारण से पाप कर्म का आश्रय और बंध होता है। मोह है ना, मोह के कारण से आश्रय और बंध हो रहा है, और यदि दूसरे के लिए दे रहे हैं तो उसमें पुण्य लग रहा है। क्यों? उसमें मोह नहीं, मोह छूट रहा है। दान में मोह छूटता है और भोग में मोह बढ़ता है। भोग के काल में पाप का कर्म बंद होता है और दान के काल में मोह छूटने से पाप कर्म कटता है, धुलता है, कम हो जाता है और पुण्य का बंद होता है दान के काल में। इसलिए दान और त्याग में जो अंतर है उसको भी ध्यान में रखना है। दान अलग चीज है, त्याग अलग चीज है। त्याग यानी छोड़ना, दान यानी देना। दान में निर्मोही नहीं होता, मोही तो रहता ही है, लेकिन एक देश मोह उसका छूटता है। पूर्ण मोह नहीं छूटता, एक देश मोह छूटता है। जितना देता है उतना छूटता है, लेकिन त्याग में ऐसा नहीं। त्याग में तो मोह मात्र छूट जाता है वस्तु से, वस्तु को ही छोड़ देता है वो। ये कल कौन सा हो गया था, अस्थितिकरण दोष ये हुआ था। रत्नत्रय से च्युत जीवों को मोक्ष मार्ग पर लगाने का प्रयत्न न करना, ये अस्थितिकरण दोष है। मोक्ष मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, इनके पास रत्नत्रय नहीं है, ये पता चलने के बाद भी प्रमादी बनकर ऐसे ही बैठे रहना या उसका समर्थन करना अपने स्वार्थ के लिए या उनके स्वार्थ के लिए समर्थन में पड़ गए तो ये भी पाप ही है, ये भी पाप है। तो मोक्ष मार्ग से च्युत हुए शिथिलाचारी जीवों को देखकर स्थितिकरण करना चाहिए, ये विधान है। स्थितिकरण का मतलब, स्थितिकरण का मतलब लाना, जैसे हो सके उसमें धन खर्च हो सकता हो कर लो, उपदेश देना पड़ता हो दे दो, एक चांटा देना पड़ता हो वो भी दे दो, लेकिन बुद्धि में आपको क्या है, दूसरे का हित हो। दूसरे का हित हो इस बुद्धि वाला जो भी करता है उसका परिणाम उल्टा नहीं निकलता, नुकसान नहीं होता उससे, हानि नहीं पहुंचाता, उससे लाभ ही लाभ मिलता है। दूसरे का हित हो ये तीव्र इच्छा अगर हो तो आप कुछ भी करने लगते, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। बच्चा लालटेन पकड़ रहा है, उसको मालूम नहीं है कि वो जलाता है, हा? आप देख रहे हैं, चुपचाप बैठोगे? माँ चुपचाप बैठती है क्या? और अगर चुपचाप बैठ जाए तो क्या अनर्थ होगा? वो तो अज्ञान है, और हाथ से पकड़ेगा तो हाथ जलेगा, खोपले उठेंगे, जल जाएगा, फिर उसका खर्चा भी आप ही करने वाले, अनर्थ दंड पूरा खर्चा आप पर आने वाला है। आप अस्पताल जाओ और इसको ठीक करो, इससे पहले ही सावधान रहते हैं। मेरे लिए यक्षा काम मत लगाओ, हाथ लगा करके। इसलिए माँ बचाती है, दयालु होती है माँ। जैसे बच्चे को माँ बचाती है, वैसे ही वात्सल के साथ अज्ञानी को ज्ञान दे करके, अज्ञानी को धन दे करके, जैसा भी वो रास्ते पर लग सकता हो वैसा लगाने का प्रयत्न करना चाहिए, वात्सल्य भाव के साथ। ऐसा नहीं, अरे तू क्या कर रहा है, इसका ऐसा क्यों करता है, अहंकार से नहीं, बिल्कुल नम्र और विनय भाव के साथ। पहले नम्र, पहले विनय, फिर बाद में वो भी औषधि नहीं चल पाई, साम दाम दंड और फिर फंड। नहीं मानता है तो प्रेम के साथ, तुमने नहीं माना है ना, इसलिए इतना दंड भरना पड़ेगा, ये फंड बनाएंगे हम इसका। हाँ, बिल्कुल प्रेम के साथ दंड वसूल करो, देना ही पड़ेगा। तो एक न एक दिन इस प्रकार करने से व्यक्ति सुधर जाता है, व्यक्ति सुधर जाता है। प्रेम से तुम कुछ भी वसूल करो, वही कह बैठता है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इतना पैसा दे सकता हूं लेकिन ये करूंगा, कहता है कि नहीं। ये उसकी कशा है, अहंकार है। अहंकार में धन देने को तैयार है लेकिन गलती छोड़ने को तैयार नहीं होता। तो कहना ठीक है, दे दो, फंड दे दो, साम दाम दंड नहीं चल रहा है तुम्हारे ऊपर तो फंड दो। क्या बिगड़ता है हमारा, फंड बढ़ेगा। हाँ, फुर्सत नहीं हो तो फंड दो। ये सब काम प्रेम से ही होते हैं, वात्सल से ही होते हैं। अगर वह इस वात्सल्य को, इस प्रेम को भी समझ नहीं पाता, इस भाषा को समझ नहीं पाता, तो उसकी उपेक्षा करने के लिए कहा है, मुड़ के नहीं देखना इसको। जब तक कि वह अपने रास्ते पर नहीं आता तब तक कोई व्यवहार नहीं, बोलने का भी व्यवहार नहीं, आने जाने का भी व्यवहार नहीं, घर से बाहर ही नहीं आना। जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक मैं नहीं आऊंगा, आना जाना मेरा कट। बिल्कुल सही रास्ता है वो, विवेकी जीव ही ऐसा कर सकता है। अब विवेकी ना हो वो कहता है नहीं जाएंगे तो चलेगा नहीं, फिर जाएगा, फिर समर्थन होगा उसका, जाना भी समर्थन कहलाता है, कायानुमोदना होती है उससे। तीन प्रकार की अनुमोदना होती है, काय से जाना, कायानुमोदना, वचन से प्रशंसा करना, वचनानुमोदना, और मन में उसका आदर रखना, मनानुमोदना। कोई कोई क्या करते हैं, काया से तो नहीं जाते लेकिन मन से आदर रहता है उनके प्रति, वो ठीक है ना। इस प्रकार वो ठीक ही है, गलती जरूर है लेकिन ठीक ही तो है वो। ये मनानुमोदना, गलत को कभी ठीक नहीं समझना। कमजोरी तो कमजोरी ही है, दोष तो दोष ही है, क्षमा नहीं करना उसको। दोष को क्षमा करोगे तो वो डबल बढ़ेगा। डॉक्टर अगर कांटा चुभा है कुछ नहीं होता, क्षमा कर दो इसको, इसको निकालना नहीं, तो बेचारा उसका पांव पक जाएगा, थोड़ा सा कण भी अंदर रह गया ऑपरेशन करते समय, तो ऑपरेशन जगह पक जाता है वो, पांव ही निकालना पड़ा, पूरा पांव ही चला जाता है, पूरा पांव ही गया, थोड़ा सा कांटा था, पूरा गांव पांव गया। हाँ, और फिर पांव पूरा जा रहा है ये पता चल जाए लोगों को, पूरा पांव जा रहा है, अस्पताल में पहुंच गया है, पूरा गया पांव और देखने के लिए अब गए पूरा गांव, पूरा गांव ही गया, उनका पूरा गांव गया, उनको देखने के लिए पूरा गांव गया। कैसे कैसे हो गया अकस्मात, ये कैसे पक गया, कैसे क्या हो गया। व्यक्ति अच्छा हो तो पूरा गांव देखने जाता है उस पांव को। बहुत विवेक चाहिए, विवेक से चलना चाहिए। और देखो सम्यक दर्शन कैसा विवेक जगाता है हमारे लिए। अगर इन आठ अंगों को हम अपने जीवन में जगाएंगे तो दूसरे के लिए भी लाभ है और हमारे लिए भी लाभ है। पर उल्टा चलने की चाह रखने वाले के लिए कोई उपाय नहीं। उसी के लिए शांति सागर महाराज ने कहा था, जो शीतलाचारी मुनि होता है, शीतलाचारी सहधर्मी होता है, उनसी उनकी भी उपेक्षा करो, उपेक्षा से ही ठीक हो सकता है, उपेक्षा से ही वह रास्ते पर आ सकता है। तुम मैत्री रखोगे तो ठीक नहीं हो पाएगा। उपेक्षा का मतलब यह है कि स्ट्रिक्ट रहो, कट्टर रहो, जाना आना बंद, इसका नाम उपेक्षा। और उनके वचन है, उनके ही वचन नहीं, ये सम्यक दर्शन के भगवान के वचन है, भगवान के वचन नहीं, बल्कि भगवान ने भी यही किया है कट्टरता के साथ, तभी वो भगवान बन पाए। जैसा चलना चाहिए वैसा चलना ही चाहिए। चलने में आप कम पड़ोगे तो दूसरा शीतलाचारी बनेगा, डबल बन जाएगा वो, और वो अप्रभावना उसी का नाम है। लोग आजकल क्या समझते हैं, मुनि के लिए हम आहार नहीं देंगे, मुनि के लिए हम वैसा कहेंगे वैसा कहेंगे तो अप्रभावना हो जाएगी। अप्रभावना यहाँ नहीं होती, अप्रभावना तो हो रही है वहां से, उसको तो उपेक्षा करके दूर रहो कहा है। सदलगामी एक साधु आए और उसने यद्वा तद्वा कर दिया, आचार अनाड़ीपना, किस श्रावकों को किस ढंग से हम बुलाएं, तरीका ढूंढ लिया उन्होंने। उपवास करके चौराहे पर बैठ गए और चिल्लाते रहे, यानी इससे जैन धर्म का अपमान हो, जैन समाज का अपमान हो, श्रावकों का अपमान हो, अपमान करने के लिए नाटक किया कि इस तरह से तो आएंगे कम से कम ये मेरे पास, नहीं आए कोई भी। तो बस दूसरे दिन लोग पूछने लगे, यानी अन्य जाति के लोग पूछने लगे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तुम्हारे साधु ऐसा क्यों, ऐसा तो ऐसा हमारे साधु है ही नहीं वो। उन्होंने कहा हमारे है ही नहीं वो, हमारे जो होते हैं ऐसा नहीं होते, जो हमारे होते हैं ऐसा नहीं रहते, और जो ऐसा रहते हैं वो हमारे नहीं होते, इतना ही कह दिया। तो लोग समझ गए जरूर उसमें कोई गलती है, लोग समझते हैं, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, सभी समझते हैं। साधु में साधुता दिखती है, अजैन को भी दिखती है, अजैन को क्या, एक कुत्ते को भी दिखती है, कुत्ता भी देखता है कि कौन महाराज इसमें और कौन श्रावक, पहचानता है वो। सम्मेलन शिखर जाते समय आचार्य सिर के साथ में एक कुत्ता चल पड़ा, और कहीं भी नहीं रहता था, आचार्य के साथ में प्रवचन होने लगा तो उनके तकत के नीचे, स्टेज के नीचे आकर के बैठता, और किसी के साथ नहीं चलता था वो। अब देखो समझ तो है उसको भी कि ये आचार्य हैं, ये मुख्य हैं, बाकी सब साधु हैं, बाकी सब श्रावक हैं, उनके पास नहीं जाता था वो, जब भी रहता आचार्य श्री के पास, जानता है एक त्रिंच भी। हाँ संस्कार रहते हैं, वो संस्कार उदय में आ गए तो वो भी जानने लगता, समझने लगता है, त्रिरंच भी जानता है कि ये महाराज हैं, ये मुख्य हैं, ये पूज्य हैं, आदरणीय यही हैं, ये प्रधान हैं। तो क्या अजैन नहीं जानेंगे, लोग इसको लेकर के कहते हैं ऐसे साधु को ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे, धर्म की अप्रभावना होगी, धर्म की हंसी उड़ाएंगे, अन्य लोग ऐसा समझते हैं। उड़ाने दो उनको हंसी। क्या हंसी उड़ाने वाले हैं? उनको भी समझ में आएगा कि साधु कैसा होता है। गलत साधु की उपेक्षा करो, उपेक्षा करा। क्या मराठी में बताया शांति सागर महाराज ने, पढ़ो वहां बोर्ड पर लिखा है उपदेश, शिथिलाचारी साधु की उपेक्षा करो। जिसके पास रत्नत्रय नहीं, रत्नत्रय का आचार विचार नहीं दिखता है तो उपेक्षा करो। ऐसा तो है जैन धर्म, और इससे हम यदि भटक जाएंगे तो हमेशा के लिए भटक जाएंगे। करेंगे तो कर लेंगे, बच जाएगा, और नहीं बचेगा तो चला गए। तो काय के लिए मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर के इतना नाटक कर रहे हैं? मंदिर आना, मंदिर बांधना और धर्मशाला और फलाना, ये नाटक भी क्यों? फिर एक आदिवासी टाइप से रहो ना। आदिवासियों को कोई धर्म नहीं होता, कोई मंदिर नहीं होते, कोई धर्मशाला नहीं होती उनकी, कोई नाटक नहीं रहता धर्म संबंधित। एक आदिवासी टाइप का जीवन व्यतीत करो तो हम कहेंगे असली अधर्म आत्मा। एक तरफ तो धर्म का नाटक करो, एक तरफ तो उपवास करो, मंदिर आओ, पूजन करो, आहार दान दो, ये सब नाटक कर रहे हैं और सही नाटक नहीं कर रहे। इनको सम्यक रूप से करो, विवेक से करो, जैसा करने के लिए कहा है वैसा ही करते जाओ। ये असली नाटक है, ये नाटक नहीं, ये असली है, जीवन है। और सभी क्रिया करते हुए विवेक से न करना ये नाटक है, विवेक से नहीं करना ये नाटक कहलाता है। ये अस्थितिकरण दोष, स्थितिकरण करना अनिवार्य है। अवात्सल्य दोष, रत्नत्रयधारी सहधर्मी में वात्सल्य न रखना। रत्नत्रयधारी सहधर्मी है और उसी से घृणा कर रहे हैं। देखो, सच्चे साधु से तो घृणा कर रहे हैं और नकली साधु को तो अपनाते जा रहे हैं। ये विवेकहीनता है क्या? विवेक है। देखो, अभी परीक्षा बुद्धि नहीं आई, रत्नकर श्रावकाचार नहीं पड़ा, नकली साधु का लक्षण भी नहीं जाना और असली साधु का लक्षण भी नहीं जाना। ऐसी परिस्थिति हो जाता है, नकली साधु के पीछे भी पड़ जाते हैं, नकली देव के पीछे भी पड़ जाते हैं, नकली शास्त्र हो उसके भी आदि हो जाते हैं, उसका ही अध्ययन कर लेते हैं, उस वक्त हो जाते हैं। परंतु भगवान ने कहा ये सब ढोंग करते रहोगे तुम्हारा कल्याण होना नहीं है, आत्मा का कल्याण नहीं होगा, आत्मा को नुकसान ही नुकसान पहुंचेगा। बहुत नुकसान पहुंचेगा। कुओं में कौन जाएगा? वो साधु जाएंगे कि आप जाओगे? आपको फल मिलेगा उसका। फिर विवेक क्यों नहीं रखा? कुओं घूमी तो तुम्हें नहीं चाहिए, और फिर करते समय विवेक से काम नहीं किया तो फल तो आपको ही मिलने वाला, रिजल्ट आप पर आने वाला है, बरसेगा तुम्हारे ऊपर, करता धरता तुम ही, नहीं तो लास्ट में कह दो फिर जब कुबो घूम जाने का समय आ गया, हे साधु तुम तो कुसाधु थे, तुम्हारी सेवा वयावृत्ति हमने की, उसके वजह से हमको पाप तो लगा है, लेकिन हमारा पाप तुम ले लो और तुम ही जाओ। दे सकते हो पाप को? पाप को ट्रांसफर किया जा सकता है क्या? ऐसा होता तो पर फिर भी कर सकते थे दया से, हे साधु कुसाधु तुम, हम दया से करते हैं फिर भी, क्योंकि मुझे पुण्य लगेगा, दया से कर रहा हूँ, लेकिन पुण्य तो लगने वाला नहीं है, पुण्य तो लगने वाला नहीं है। कुसाधु की सेवा से पाप ही लगेगा, पुण्य कभी लग ही नहीं सकता। हाँ बारीकी से सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से सोचे, डीप जाना चाहिए अपने को। जो डीप सोचता है वही विवेक का काम, बुद्धिमानी का काम कर सकता है, नहीं तो भटक जाएगा, जिंदगी बिगड़ जाएगी उसकी। सोचना तो डीप ही पड़ेगा। उसके बिना कोई रास्ता नहीं, डीप चलना पड़ेगा और डीप ही सोचना पड़ेगा। हाँ सोच समझ करके निर्णय ले करके, पहला देखना क्या है क्या नहीं है, फिर सोचना, फिर कदम उठाना। देव शास्त्र गुरु का जहां तक सवाल है वो सच्चे चाहिए अपने को, नकली नहीं चलेंगे, सच्चे ही चाहिए। और ये संकल्प चाहिए, सच्चे ही चाहिए, ये संकल्प चाहिए। संकल्प बिना काम नहीं होता। गंगा जाए तो गंगादास और जमुना जाए तो जमुनादास, ऐसा नहीं चलेगा। ये विचार किया करो कि हम यदि उस कुदेव कुर को शास्त्र की सेवा करेंगे तो जो पाप आ रहा है वो किसको फल मिलने वाला है, इसका चिंतन करना चाहिए, तो ऑटोमेटिक घृणा हो जाएगी उससे। हमारा किया हुआ पाप उनको दे सकते होते तो करना बहुत अच्छा था, जाए वही बाहर में जाए, हमारा क्या लेन देन। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, हमारा किया हुआ पाप हमारे साथ रहता है, उनका किया हुआ पाप उनके साथ रहता है, तो हम संपर्क करें ही क्यों उनका। नकली शास्त्र का संपर्क नहीं करना, उनको घर में नहीं रखना, जो सिद्धांत से प्रतिकूल है। शास्त्र की भी परीक्षा करो, असली शास्त्र रखो। गुरु की भी परीक्षा करना, एक ही गुरु को बनाना, हजार गुरु की अपेक्षा नहीं रखना। मार्ग निर्देशन के लिए गुरु मार्ग निर्देशन देता और विवेक से जो मार्ग निर्देशन दे सकता है उसको अपना गुरु बनाना, हरे को नहीं बनाना, सोच समझ के बनाना, स्वतंत्रता पूर्वक बनाना, किसी के जोर जबरदस्ती में नहीं आना। पॉलिटिक्स कि तो ऐसा कर नहीं तो ऐसा करूंगा तुमको, नहीं चलेगा, कह दो उनसे तुम्हारे पॉलिटिक्स का यहाँ कुछ नहीं चलता, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा धर्म स्वतंत्र है, मेरे गुरु जो हैं वही हैं, मेरे देव जो हैं वही हैं, हमारा शास्त्र आत्म कल्याणकारी शास्त्र जो है वही है, उसको छोड़ के हम हिलेंगे नहीं। ये न हिलना अपने लिए हित करता है, पाप से बचाता है अपने को। ये संकल्प हमारे ही पाप के बंध से बचने का उपाय है। ऐसा संकल्प है क्या नहीं है? हाँ यही करना है। सबसे ज्यादा सोचना विवेक से, पहला अच्छा क्या बुरा क्या, पहला आंखों से देखो, फिर उस वस्तु में सोचो, फिर उस वस्तु के प्रति कदम उठाओ। लोग पूछते महाराज कोई नई आ जाए तो उस समय क्या करना, अभी दुकान में नई साड़ी आई है तो उस समय क्या करना, धड़ाम से पैसा देकर के खरीदना, साड़ी भी तो नहीं आई है। बिना सोचे बिना देखे बिना परीक्षा किए लेते हो क्या? तो गांव में रहने वाले देव शास्त्र गुरु, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो, उनकी परीक्षा जरूरी है क्या नहीं, उसमें देवत्व है क्या नहीं ये देखना पड़ेगा, उसमें गुरुत्व है क्या नहीं ये देखना पड़ेगा, उसमें शास्त्रत्व है क्या नहीं ये देखना पड़ेगा। वो नया हो या पुराना हो क्या फर्क पड़ता है, परीक्षा किए बिना हम कदम नहीं उठाएंगे, ये पक्का पक्का होना ही चाहिए। नया आ जाए तो क्या करो, नया आ जाए तो फिर पहले झुको, फिर पाप को बंद करो, फिर पाप बंद करने के बाद सोचते रहो, फिर पश्चाताप करते रहो, प्रायश्चित लेते रहो, ऐसा करते रहोगे दोबारा धंधा। पहला परीक्षा, संसार में हम हर काम को परीक्षा करके करते हैं, धर्म के लिए आंख मीच करके एक बार कर लें, एक बार आंख मीच करके पाप को बांधे और फिर उसको धोते हुए बैठे, ये दोबारा धंधा किसने कहा, पहले से सावधान रहो। गुरु कौन है, पहले देख तो लेते, पहले जाके रखे, हम ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे कि है कि भी कि नहीं कि गुरु ये रत्नत्र है क्या नहीं, पांव से लेकर नीचे तक रत्नत्र देखो, उनके आचार विचारों में पहले देखो, आचार विचार की परीक्षा किए बिना किसी भी काम के प्रति प्रणामम विनयम चैव न कुर्यो शुद्ध दृष्टया, शुद्ध सम्यक दृष्टि प्रणाम और विनय भी तब तक न करे जब तक परीक्षा न हो। सब करना पड़ता है, सब करना पड़ेगा, असली है तो अपने को कोई आपत्ति नहीं, नकली हो तो उससे कोई मतलब नहीं, इतना ही, असली हो तो कोई आपत्ति नहीं, आओ गुरु की कोटि में है, नमोकार मंत्र में है क्या नहीं यही देखेंगे हम पहला। रत्नत्रयधारी नमोकार मंत्र में होता है, रत्नत्रय नहीं हो तो नमोकार मंत्र में वो है ही नहीं, फिर वो हमारे आराध्य ही नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, उनसे द्वेष भी नहीं राग भी नहीं कुछ भी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं अपने को, मतलब जिससे है उससे मतलब है। क्यों, क्योंकि इस व्यवहार में हमको पाप भी बंधना संभव है और पुण्य भी बंधना संभव है, पाप न बंधे हमारे लिए ये हमारी सावधानी है, अपने को पाप से बचाने के लिए परीक्षा की जाती है, परीक्षा उनके दोषों को ढूंढने के लिए नहीं, दोष ढूंढे नहीं जाते, दोष देखे जाते हैं, उद्देश्य क्या होता है, अपने को पाप से बचाना है, इसलिए सब मालूम होता है। धर्मात्मा के पास राग द्वेष नहीं होता, धर्मात्मा के पास सावधानी होती है, विवेक होता है, वो पाप से हर समय बचता रहता है, हमारे रत्नत्रय में हमारे सम्यक दर्शन में दोष न लगे ये देखता रहता है, दोष से बचकर निकलता है वो, उसको राग द्वेष नहीं रहता किसी से, गुणवान मिल जाए तो प्रसन्न होता है, दोषवान मिल जाए तो उसकी निंदा तक नहीं करता, घृणा तक नहीं करता, उससे उसकी उपेक्षा करता है, उपेक्षा का मतलब उससे कोई मतलब नहीं, ये भाव, ये उपेक्षा के भाव कहलाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं उससे, उससे कोई काम नहीं, मतलब दीवार पर चिपकली बटी है चिप चिप कर रही है, उससे कोई मतलब है आपको, आपको किससे मतलब है, वो काम चल रहा है आपका, हो गया आपका काम हो गया, चिपली की चिपकली की निंदा क्यों कर रहे हो फालतू। उससे द्वेष क्यों कर रहे, वो तो बैठी है, उससे कोई लेन देन, ऐसे ही दोषवान व्यक्ति से कोई लेन देन नहीं, उसकी निंदा नहीं, उसकी उसका द्वेष नहीं, उसकी पूजा नहीं, उसका कोई संबंध नहीं, उनके पास कोई आना जाना नहीं, कुछ नहीं, छोड़ दिया ऐसा। देखो कितनी जिंदगी जीने की कला सिखाता है सम्यक दर्शन, एक सम्यक दर्शन आने के बाद भी तुम्हारे पास ऐसी व्यवहारिकता आती है जिस व्यवहारिकता से किसी को तकलीफ नहीं होती, धर्मात्मा किसी को तकलीफ देता नहीं और धर्म किसी को तकलीफ देने का रास्ता बताता नहीं है। धर्म केवल आत्म कल्याण के मार्ग को बताता है। तुमको अपनी आत्मा को पापों से कैसे बचाना, ये रास्ता बताता है धर्म। बिल्कुल निर्भय, निर्भय रहो, किसी से डरना नहीं। डरने की क्या जरूरत है, आगे भूत है, पिशाच है, दुनिया में कौन है, डरना नहीं। डरोगे तो धर्म कर नहीं पाओगे, और डर जो है व्यर्थ होता है। डरता कौन है, अज्ञानी डरता है। अज्ञानी ही क्यों डरता है, ज्ञानी क्यों नहीं डरता? तो अज्ञानी ने व्यर्थ कुछ भी समझ करके, भूत बना करके अपने मन में एक भूत बिठाए रखता है वो अज्ञानी, कि ऐसा करूं तो ऐसा हुआ क्या, ऐसा करूं तो ऐसा हुआ क्या, कुछ भी व्यर्थ सोचता रहता है, इसलिए भय लगता है। नंगे खुदा, क्योंकि खुदा भी हमको खोद के देख ले, हम नहीं मिलते इसलिए खुदा भी डरता है। खुदा भी हमको खोद के देख ले, इनमें दोष है क्या नहीं, तो नंगे के पास क्या दोष मिलने वाला है, वो तो नंगा तो नंगा है, अंदर से भी नंगा और बहिरंग से भी नंगा, दोष नहीं होते उसके पास, इसलिए खुदा भी डरता है, क्योंकि शायद हो सकता है खुदा में दोष हो। डरने वाला दोषी होता है। जो डरता है वो दोषी होता है, और जो नंगा डरता भी नहीं और डराता भी नहीं, नंगा डरता भी नहीं डराता भी नहीं, क्योंकि वो निर्दोषी होता है। भगवान से भी हम नहीं डरते, डरते क्या? श्रावक से हम नहीं डरते क्या? डरते, डरने की क्या जरूरत है, उनसे क्या खाया हमने? हम किसी से नहीं डरेंगे, हमारे लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं डराने वाली, चाहे दुनिया सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और एक निर्ग्रंथ साधु ज्ञानी चारित्रवान और निर्दोष समझदार, धर्म को जिसने पूरी तरह से समझ लिया है, वो एक तरफ और दुनिया एक तरफ, वो डरेगा क्या? ये सब लोग एक तरफ हो गए, मेरा क्या होगा, ऐसा डरेगा क्या? मेरा क्या होगा, मैंने जिंदगी की आशा छोड़ दी है, मैं सो धर्म हूँ, धर्म के अलावा कुछ हूँ नहीं, और जो है वो छीन नहीं सकते, मैं डरूं क्यों? रत्नत्रय को कोई छीन सकता होता ना तो हमारे लिए डर था, और छीनने की चीज नहीं है वो। आपकी सच्ची आस्था को, श्रद्धा को कौन छीन सकता बताओ? अस्त्र शस्त्र से मारेगा, कबूल करेगा, बहुत उपसर्ग करेगा, उस समय श्रद्धा जाती है क्या? और दृढ़ होती है वो, जितना मारोगे उतना और गहरी उतर जाती है। जैसे कांटा होता है ना, कांटे से कांटे निकालने के चले जाते हैं, तो वो पहली वाली कांटा तो ठीक ही है, ये जो जिससे निकाल रहे हैं वो टूट गया और उसके अंदर वो चला गया। होता ऐसा है, धर्मात्मा पर जितने कष्ट आएंगे, उपसर्ग आएंगे, धर्मात्मा उतना ही गहरा हो जाता है, और गहराई बढ़ती जाती है उसकी। क्यों? वो तो ज्ञान से ही सोचता है सभी, और ज्ञान से सोचने पर उसका स्वयं का रास्ता निकालता है वो, तो सोचते समय गहरा बन जाता है ना, चिंतक बन जाता है, गहरा बन जाता है, और फिर वह ज्ञान का ही रास्ता पकड़ेगा कि अज्ञान का पकड़ेगा? ज्ञान का ही पकड़ता है वो, ऐसा होता जाता है। धर्मात्मा अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता है, और जो अधर्मात्मा है, अधर्मात्मा अगर ज्ञानी बन जाए तो अधर्म को तो छोड़ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति एक बार ज्ञानी बन जाए तो ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। ज्ञान स्वभाव छोड़ने लायक होता ही नहीं, ज्ञानी ज्ञानी बन करके रहता है। श्रद्धा श्रद्धावान बन करके रहता है। इसलिए सम्यक दर्शन एक बार आने के उपरांत कहते हैं ना छूटना नहीं चाहिए, छूट गया तो प्रथम गुण स्थान में आ जाएगा। और छूट सकता है, कब छूट सकता है, जब हम विवेकहीन होंगे तब छूटेगा। कुछ कर रहे थे, अच्छी तरह से चिंतन करके सोच विचार करके कदम नहीं उठाया और भूल हो जाती है उस समय। भूल के समय कदाचित सम्यक दर्शन छूट जाए, छूट जाए, नहीं तो भूल नहीं करेगा तो सम्यक दर्शन छूटने वाला नहीं है। जैसे ज्ञान के संस्कार चिंतन के कारण से, चिंतन के कारण से ज्ञान के संस्कार बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, अब वह निर्भय होता चला गया और संस्कार आ गए। कभी कभी क्या हो जाता है, जब वह पूर्व संस्कार रहते हैं ना, वो संस्कार एकदम खत्म नहीं होते। जैसे सम्यक दर्शन तो धारण कर लिया, सब ज्ञान मालूम है वो गलत है, लेकिन छिपकली बोल गई, चिप चिप चिप, तो मन में आ ही जाता है वो, क्या जो लोग लोगों का धर्म है वो बात तो आ ही जाती है, बिल्कुल ठीक बोलती है, देखो कह दिया तुमने, तीन बातों के साथ उस चिपकली का क्या संबंध है। ये संस्कार वश, भूल वश ऐसा होता है तो ज्ञानी लेकिन गया, गई दृष्टि गई, हाँ फेल हो गया वो। हाँ, मन में तो आता है अरे बिल्ली तो आ गई, ज्ञानी तो बन गए हैं आप, लेकिन इसके बाद भी मन में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, लेकिन उस पर जो पहले विश्वास था वो तो चला गया है, लेकिन बिल्ली जाते ही मन में तो आता है बिल्ली काट गई रास्ता, अब मेरा काम होगा क्या, नहीं फिर आप समझ जाते हैं, ज्ञान है ना, समझ जाते हैं अरे ये तो ठीक है, बिल्ली तो जाती रहती है अपने काम से, काम तो मेरा होता ही है, नहीं होना तो मेरे पाप कर्म के उदय से नहीं होगा, होना है तो पुण्य कर्म के उदय से हो। बिल्ली क्या करेगी, बिल्ली तो अपने काम से जा रही थी, मैं अपने काम से जा रहा हूँ, बिल्ली अपने काम से जा रही है। हाँ, वो बिल्ली जाते समय हमारे पुण्य को लूट करके ले जाती है क्या, बताओ। और इधर के इधर वो जा रही है तो हमारे क्या पुण्य को रख करके जाती है क्या, पाप को ले जाती है और पुण्य को रख करके जाती है, ऐसी ताकत है कि बिल्ली के पास, तो बिल्ली के साथ पाप पुण्य का कोई संबंध ही नहीं है। तो बिल्ली के कारण से हमारे कार्य होना नहीं होना ये मूर्ता की बात है, लोक मूर्ता है। हाँ, वहाँ वो तो दुकानदार है, वो तो दिमाग पहला बिगाड़ेगा और फिर बाद में सोच के बताएगा, फिर वो पास से गई क्या दूर से ही गई थी, फिर स्पर्श के करके ही गई थी, उसके हजार बातें पूछ करके तुमको उलझा देगा, और वो धंधा है उनका उलझा करके निकालना, वो धंधा है। धंधे वाले सभी धंधे के लिए ये मिथ्या काम करते हैं, सोचो इसको। हाँ, उनके अंडर में मत जाना। वो धंधा वाला है और आप उनके ग्राहक हैं, जो अज्ञानी है वो ग्राहक रहते हैं, ज्ञानियों को ग्राहक बना ले देखेंगे उनको। बिल्ली आपको ही रास्ता काटती है, मुनि महाराज के रास्ता काटे तो पाप बेचारे वो क्या करे। हमको ही तो बिल्ली कभी कभी काटती है, आहार जाते समय मैं देखता हूँ कुत्ता इधर से उधर गया, बिल्ली उधर से उधर गया, क्या मैं लौट के आऊं ये कह करके कि आज आहार होना असंभव है। हमने महाराजों को भी देखा है, मैं नाम नहीं लेता, कि दूसरे का नाम खराब नहीं करना है। महाराज उनको भी लौट करके आते हुए देखा है। नहीं वो पढ़ाने वाले खड़े थे, बिल्ली काट गई तो वो इस रास्ते से नहीं गए। महाराज भी घूम करके आए और फिर सावकों ने आकर के पूछा आहार के बाद, महाराज आप आते आते लौट क्यों गए? तुमने बिल्ली रास्ते ने काटा, रास्ता काट खाया। अब लोक मूर्ता साधु के पास है तो सम्यक तो कहाँ है। अब ऐसे साधु को प्रथम गुणस्थान है और ऐसे साधुओं से ही आपको दूर रहो कहा है। जो ऐसी लोक मूर्ता को भी अपने जीवन में आचरण में अभी त्याग नहीं कर पाए वो साधु साधु नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, धर्म का मूल ही नहीं है। वहाँ लोक मूर्ताएं ये धर्म के मूल को समाप्त करती है। ये लोक मूर्ताएं अज्ञान के कारण सी रहती हैं जीवन में। ये लाइट लग गई, हाथ जुड़ ही जाता है, जाता है कि नहीं? अच्छा भगवान है, भगवान आ गए क्या आपको? क्या देव शास्त्र गुरु में से कौन आए बोलो? लाइट आया कि देव शास्त्र गुरु आए? वहां तीन ही पूजनीय और वंदनीय है। आपको ऐसा क्यों होता है? किसने सिखाया? देख करके सुन करके तो सीखी हुई बात है ना। इन्हीं को लोक मूर्ता कहते हैं। लोक मूर्ता सम्यक्तो का दोष है। नदी आ गई तो पैसा जिसने हाथ गया ही, नदी आ रही है, जाता ही ऑटोमेटिक जाता पैसा। ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं, ये लोक मूर्ता के संस्कार कहलाते हैं। इन संस्कारों को धोना ये सम्यक दर्शन है। जो व्यर्थ है, अनर्थ है, उसमें कोई अर्थ नहीं, ऐसे कामों को सुधारना ये सम्यक दर्शन है। लोकमूर्ता दोष में आएगा ये। अवात्सल्य यानी रत्नत्रयधारी सदर्मी में वात्सल्य न रखना, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? न रखना दोष है, रखना गुण है। जो गुणवान है उनमें अनुराग वात्सल्य रहना ही चाहिए। जो दोषवान है उनसे कोई संबंध मतलब ही नहीं है, वो सधर्मी कहलाते भी नहीं। सधर्मी के कोटि में कौन आते हैं? केवल वेशधारी आते हैं क्या? रत्नत्रयधारी, रत्नत्रय हो तो ही सधर्मी। सहपाठी किसको बोलते हैं? जो अपने साथ पढ़ रहा है। मैं भी वही विषय पढ़ रहा हूँ, ये भी विषय पढ़ रहा, उसको क्लासमेट या सहपाठी ऐसा कहते हैं ना। तो क्लासमेट का मतलब एक कक्षा में रहने वाले, वैसे सधर्मी का मतलब धर्म दोनों में हो तो सधर्मी, एक में है और एक में नहीं है तो सधर्मी है क्या? सधर्मी नहीं। सधर्मी का तात्पर्य दोनों में धर्म होना, वो भी सम्यक दृष्टि हो, ये भी सम्यक दृष्टि, वो भी चारित्रवान, ये भी चारित्रवान, वो भी ज्ञानवान, ये भी ज्ञानवान, एक ही जाति का होना चाहिए रत्नत्रय। रत्नत्रय में कोई फर्क है क्या? जाति है, क्वालिटी है, क्वालिटी हो सकती है, लेकिन रत्नत्रय में कोई जाति है नकली और असली? रत्नत्रय यानी रत्नत्रय। दूध में क्वालिटी हो सकती है, लेकिन दूध तो एक ही है, दूध दूध ही है, किसी का भी हो दूध ही कहलाता है, उसका भक्षण तो होता ही है, उसका बच्चा उसका दूध पीता ही है। प्राणी हो, कोई भी तिरंज हो, दूध दूध ही होता है। और जो नकली होता है उसको दूध कहते भी नहीं, जैसे वनस्पति का दूध, आंक का पत्ता, उसको भी नाम तो दूध ही है पर वो दूध नहीं, वो रस है। दूध नहीं, वो रस है। कौन सा रस? वनस्पति रस, जैसे फल का रस, पत्ते का रस, रस है वो। दूध कैसे कहेंगे? उसको दूध नहीं कहेंगे, लेकिन व्यवहार में कहने में तो आता है ये पेड़ का दूध है, आग के पत्ते का दूध है, दूध लगाओ ये रोग ठीक हो जाएगा, ऐसा कहते हैं ना, दूध के नाम से ही चलता है, पर वो दूध नहीं है। दूध जो होता है वो पीने योग्य होता है, और नकली दूध जो होता है वो लगाने योग्य होता है, लगाने योग्य, पीने योग्य नहीं होता। तो वात्सल्य रत्नत्रय धारी सधर्मी में वात्सल्य न रखना, अप्रभाव न, धर्म मार्ग में व्याप्त अज्ञान को हटाने में प्रमाद करना। देखो ये किसकी जिम्मेदारी है, सम्यक दृष्टि श्रावक की भी है और मुनि की भी है। अप्रभावना को हटाओ और प्रभावना करो, इसका मतलब क्या, लोगों में जो अज्ञानता छाई हुई है धर्म के संबंध में, धर्म के लक्षण को न समझने के फलस्वरूप, धर्म के असली स्वरूप को प्रकट करना। धर्म यही होता है, ऐसा ही होता है, सम्यक दर्शन का स्वरूप ऐसा ही होता है, देव का स्वरूप ऐसा ही होता है, गुरु का स्वरूप ऐसा ही होता है, इस स्वरूप का प्रचार प्रसार, ये धर्म प्रभावना है। आज यही नहीं हो रहा है, इसी कारण से लोग भटक रहे हैं। गुरु का लक्षण पता न होने से नकली गुरु के पास जाते हैं, देव का स्वरूप पता न रहने से नकली देवों के पास जाते हैं, शास्त्र का स्वरूप पता न रहने से नकली शास्त्र पकड़ के पढ़ने लगते हैं, स्वाध्याय करने लगते हैं और उसको शास्त्र समझने लगते हैं। बात इतनी सी है कि सच्चे शास्त्र को एक बार पहचानो और उसको अपना संबंधी बना लो, ये हमारा शास्त्र। नकली शास्त्र को भी समझो और असली शास्त्र को भी समझो। कैसे होता है, रत्नगर सावकाचार्य में ये सभी है, तीन पद्य हैं वो, शास्त्र का लक्षण भी लिखा है, गुरु का लक्षण लिखा है, देव का लक्षण लिखा है, उसको बार बार मनन करो, पांच छह लाइन है, आप बार बार दिमाग में प्रश्न आपको उठता है कि महाराज कैसे समझे, वो आचार को कैसे समझे और सम्यक दर्शन को कैसे समझे और शास्त्र को कैसे हम परीक्षा करें, ये होते हैं कि नहीं। अरे शास्त्र किसी का भी हो, शास्त्र की जांच कैसे करना, उसका एक कसौटी दिया है, सूत्र दिया है, क्या दिया है, तो रत्नगढ़ सावकाचार्य का वह पद्य याद आना चाहिए आपको, सच्चे शास्त्र का लक्षण। हाँ, आप तो पद्य मनोलंग्य मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घटनम, इसका अर्थ मनन करना चाहिए और एक बार ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि आप हर शास्त्र की परीक्षा कर सकेंगे। तो क्या बता रहे हैं उसमें, हाँ पहली बात, हाँ लक्षण, जितने भी लक्षण है उसके तीन चार पॉइंट है, उतना ही ध्यान में रखना। पहला पॉइंट, वीतरागी भगवंत के द्वारा ही उपदिष्ट होना चाहिए, आप्त यानी वीतरागी भगवान, आप्त के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए, एक अन्य का नहीं मानना। जिसको भगवान ने नहीं कहा है उन वचनों को मानना ही नहीं, हो गया, भगवान का कहा हुआ है क्या नहीं, इतना ही अपने को चाहिए। तो भगवान को तो कहा नहीं, ये फलाने व्यक्ति ने लिखा है, और उसको फिर शास्त्र कैसे समझ रहे हो, भगवान का कहा हुआ नहीं है तो उसको शास्त्र कहना भी नहीं और शास्त्र मानना भी नहीं, भगवान के द्वारा कहा हुआ लिखा हुआ है तो उसको शास्त्र समझना। तो भगवान के द्वारा ही कहा हुआ है, ये कैसी परीक्षा करें, इसने कहा है कि उसने कहा है, तो उसकी भी जांच करने की तरीका है, आपको अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन करते करते सब मिल जाएगा, पर करते नहीं है ना, अपने को एक मिनट में बताओ महाराज, तुम तो रेडीमेड वस्तु मांगने वाले, एक पांच मिनट में और दस मिनट में सब कुछ धर्म ही समझ में आ जाए, जो साल भर समझाया जाता है पांच मिनट में मांगते, ऐसा नहीं मिलता धर्म। ऐसा धर्म नहीं मिलने वाला पांच मिनट में, थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ेगी, हर चीज को सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल भी करनी पड़ेगी, परीक्षा कैसे करना, क्या नहीं करना, अच्छे से बैठ के समझना पड़ेगा। तुमको फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं है तो फिर धर्म तुम्हारे जीवन में आने के लिए उसको भी फुर्सत नहीं, वो भी कहता है जाओ जाओ, तुम पांच मिनट में मुझे बुलाने वाले, मैं आ नहीं सकता तुम्हारे जीवन में पांच मिनट में। धर्म भी कहता है जाओ, धर्म के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, समर्पित रहना पड़ता है, लगाव से चिंतन मनन भी करना पड़ता है। लक्षण को पकड़ो, लक्षण को पकड़ने के बाद ये सोचो कि पहला है आप्त के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए, तो इतना तो गच कर लो कि आप्त का कहा हुआ होना चाहिए, अन्य का कहा हुआ शास्त्र माना नहीं जाता, अन्य का लिखा हुआ शास्त्र कहलाता नहीं, तो मान के चले अन्य ने लिखा है और भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही लिखा है, तो उसमें दोष मिलेंगे नहीं, वो निर्दोष ही रहेगा। तो फिर भगवान का कहा हुआ हो या अन्य के द्वारा कहा हुआ हो लिखा हो, बात तो एक ही है, जिस शास्त्र में दोष नहीं निकलते, जो शास्त्र कुमार्ग का पोषण नहीं करता वो असली शास्त्र ही, और कुमार्ग का पोषण होता है कि नहीं होता है सिद्धांत के आधार से अपने को देखना है। जैसे किसी शास्त्र में लिखा, लिख दिया और ऊपर नकली नाम भी रख दिया, सर्वज्ञ प्रणीत, ये उमा स्वामी आचार्य लिखित, और फिर नीचे ये संशोधित, ये भी लिख दिया है, सब लिख करके शास्त्र लिखा और उसमें एक बात ऐसा भी रख दी कि स्वर्ग के देव भी देव होते हैं और वितरागी भगवान भी देव होते हैं और ये स्वर्ग के देव अपने ही होते हैं और दूसरे भी होते हैं, यानी अजैनों के भी होते हैं और जैनों को भी होते हैं, गड़बड़ कर दिया इनने, गंदा मचा दिया, और क्या कह रहे हैं इसकी भी उपासना करो और उसकी भी उपासना करो, ऐसा कोई शास्त्र मिल गया मान लो, तो आप कैसे जांच करोगे इसको। हाँ, वीतराग सिद्धांत के ऊपर आपको इसका जांच करना पड़ेगा, आपका धर्म वीतराग है क्या राग है, इतना ही देखना, आप वीतरागता के उपासक हैं या राग के। जैन धर्म में राग की उपासना कहीं हो तो वो जैन धर्म नहीं, और जिसमें वीतरागता की उपासना है वही असली जैन धर्म है, यही है ना। तो सिद्धांत ये है कि वीतरागता ही धर्म है, रागी और राग ये वंदनी पूजनी नहीं है, इतना तो पक्का है क्या नहीं, इतना तो विश्वास है क्या नहीं, क्या उसमें भी शंका है, रागी भी पूछता है क्या नहीं, समझ में नहीं आता, अरे पागल कहाँ का, राग राग ही है, राग पाप है क्या नहीं, पाप पूजनी होता है क्या, तो इतना ही निर्णय लेना है, पहला सिद्धांत इतना ही है, राग पाप है, दुर्गति का कारण है, रागी की राग की पूजा पाप है, दुर्गति का कारण है, और वीतरागी की पूजा आत्म कल्याणकारी है, पाप निर्जरा का कारण है, पुण्य बंध का कारण है, मोक्ष प्रदायक है, बस इसलिए वीतरागी हमारा आयतन है और ये हमारा अनायतन है। अज्ञानियों ने क्या गंदला मचाया है कि उन्होंने ये जैनी की देवता, इसलिए इनकी पूजा करो, ये जैनों की देवता, रागी है पर उसमें उन्होंने संप्रदाय छाप छोड़ दिया, जाति का छाप छोड़ दिया, और भ्रमित किया हमारे स्त्रियों को, जिसने भी किया हो, और ये हुआ है भट्टारक परंपरा में। रागी देवताओं के और उसको जैन कह करके, जैनी देवता कह करके, यक्ष यक्षी कह करके उसकी पूजा पद्धति का प्रचार भट्टारकों से हुआ है। कोई आचार्य नहीं करते, कोई मुनि नहीं करते, क्योंकि वो वीतरागी होते हैं। और यहाँ पर गंगला एक बार जो हुआ है ना, वो रोड़ी ऐसी रोड़ी चली आई, ऐसी रोड़ी चली आई, लोग भ्रमित हुए कि जैन धर्म रागी की पूजा जैन धर्म है कि वीतरागी की पूजा जैन धर्म है। बहुत बड़ा घपला कर दिया जैन धर्म ने, बहुत बड़ा घपला। अब एक जैन वीतरागी का उपासक रागी देवता का उपासना करने लग गया तो वो अजैन हो गया कि जैन हो गया? आप सोचो, रागी का पूजक जैन है कि अजैन है? ज्ञानी है कि अज्ञानी है? बस यही है, इतना ही सोचना, इससे ज्यादा क्या सोचोगे? ये अजैन है। टाइम बहुत हो गया। अच्छा, आज लेट आए थे क्या? जिनवानी
प्रभु देव तुम्हारी।